there?
Yes. Gopal Krishna Maharaj, Lokanath Swami.
Charu Krishna?
Yeah, Bhakti Charu. Navyogendra Swami. Dina Bandhu.
Oh, you should begin. Oh, why late?
रघुनाथ भट्ट
रघुनाथ गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी रघुनाथ भट्ट तीन जने
अज्ञान क्रीरांधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्तिशे तवैवास्मि नजिमानुतया विना इति विज्ञाय राधे तं मां शरणं केशव गोस्वामी महाराज जी के सहज चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता तत्पश्चात शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के भी चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन कर तत्पश्चात सन्यासी गण ब्रह्मचारी गण वैष्णव और वैष्णव चौथा योग मेरा और अभिनंदन स्वीकार करें। अभी मथुरा की अंतर्गृही परिक्रमा चल रही है। एखनो हमारा मथुरा अंतर्गृही परिक्रमा করছি, তার মধ্যে আজকে আমরা পদ্মনাথ আদি পদ্মনাথ শ্বেত বারা কৃষ্ণ বারা শ্বেত বারা দ্বারকাধীশ গতাশ্রম কিলা এই সব স্থান আমরা দর্শন করব। विशेष करे आदि कृष्ण बारा इटा ब्रह्म कल्पे की ब्रह्म मनवंतरे मनवंतर में मनवंतरे ब्रह्मा नाशकाक्षित्रिति के পৃথিবীকে উদ্ধার করবার জন্য বেড়ে গেছিলেন। তিনি পূর্ণরূপে শুকর ঋতু ছিলেন, চতুপাদ পূর্ণরূপে কৌলদেব বরাহ ঋতু, আর দ্বিতীয় তিনি সমুদ্র থেকে সমুদ্রের জল থেকে শ্বেত বরাহ রূপে নীল বরাহ, উপরে বরাহ রূপ আর নিচে মনুষ্যের রূপ এই ধারণ করে পৃথিবীকে তার কেন্দ্রস্থানে তিনি স্থাপন করেন, আর হিরণ্যাক্ষকে তিনি বধ করেছিলেন। দ্বিতীয়তেই হিরণ্যাক্ষকে বধ করেছিলেন, জলের থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার নাসিকা থেকে, আর উনি নাসিকা থেকে এই কৃষ্ণ বারা শাস্ত্রের মধ্যে লিখিত হয়েছে, বাসুদেব নামক কোন বিপ্র তার পূজা করত, ইন্দ্র তাহাকে প্রসন্ন করে নিয়ে সেই বারা কৃষ্ণ বারা মূর্তি নিয়ে যান স্বর্গলোকে, আর তাহার পূজা বিধান করে। পরবর্তীকালে রাবণ ইন্দ্রকে পরাস্ত করে দিয়ে ওই বরাহ মূর্তি নিজে লঙ্কাতে স্থাপন করে, আবার পরবর্তীকালেতে রামচন্দ্র রাবণকে মেরে আর ওই বরাহ মূর্তি অযোধ্যাতে স্থাপন করে। পরে শত্রুঘ্ন গোপাল তিনি মথুরাতে লড়াসুরকে বধ করতে যাবেন, ওই সময় রামচন্দ্রের কাছ থেকে মেঙ্গেলেন, আর ওই বিগ্রহ তিনি মথুরা নিয়ে আসেন, আর লোনাসুরকে বধ করে এখানে স্থাপন করেন। প্রাচীন মূর্তি এইসব পরিক্রমা আমরা করছি করাচ্ছি, তার উদ্দেশ্য কি? দেশ ভ্রমণ নয়, এটা বুঝে রাখুন, দেশ ভ্রমণ নয়, উই আর ট্রাভেলিং, দিস ইজ নট অনলি ফর ট্রাভেলিং, দেশ ভ্রমণের জন্য নয়, এটা হচ্ছে জীব অনাদিকাল থেকে বদ্ধ, ভগবানের বিভিন্ন অংশ তটস্থা শক্তি থেকে সৃষ্টির আদিকাল থেকে বদ্ধ, সুখ খোঁজছে, শান্তি খোঁজছে, শান্তি পাচ্ছে না, সুখ পাচ্ছে না, এখন সুখ শান্তি কিসে পাওয়া যাবে? আর এই আওয়াগমনের মার্গটা কখন বন্ধ হবে? আমরা পুনরায় কৃষ্ণের সেবাতে কখন নিয়োজিত, কিভাবে নিয়োজিত হব, এইসব বুঝাইবার জন্য ডেকেছি। যে আপনারা এইসব শুনুন, আপনারা হাড় মাংস রক্ত পায়খানা পেশাবের থলি নহে, এর ভিতরে আপনারা আত্মা কৃষ্ণের নিত্য দাস, বর্তমানে ভুলে গিয়েছি, মনে করছে যে আমি আমুকের স্ত্রী অমুকের পতি, এই জাগতিক সব বলি মনে করছি, শুনছি বারবার তথাপি সাবধান হচ্ছি না, এই সব বুঝাইবার জন্য যে জীব মধ্যে ভগবান চেতনতা শক্তি দিয়েছে, চেতন শক্তি দিয়েছে, জীব মনুষ্য রূপেতে সাধু সঙ্গ করতে পারে, অন্য কোন জনিতে করতে পারে না, এবং সাধু সঙ্গ করে, গুরু পদাশ্রয় করে, ভগবানের ভজনেতে তৎপর হতে পারে,
এই জন্য ডাকি। আর এক মাস পর্যন্ত এইসব হরিকথা দিই। আর ব্রজভূমি খুব শক্তিশালী, কৃষ্ণের যেখানে যেখানে লীলা, রাসলীলা, রাধাকুণ্ড ইত্যাদিতে এইসব যে হয়েছে পরম গোপনীয়, ওই স্থানেতে গেলে কারো সুকৃতি হয়, কারো আবার ভক্তি হয়, কারো ভক্তির আবার আরো বৃদ্ধি হয়, কারো অধিকও বৃদ্ধি হয়। এই জন্য আমরা সব দেখেছি, এমনকি জীবের অধিকার কত দূর হতে পারে তত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাতে একসঙ্গে শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ সেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিয়ে, এছাড়া সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরা বাস, শ্রদ্ধাপূর্বক, তাছাড়া আরো স্মরণ, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, আর তার মধ্যে হরিনাম সঙ্গ। কেবল মৃদঙ্গ সহকারেই হরিকথা নয়, কীর্তন নয়, সুখদেব গোস্বামী কৃষ্ণ কথা কীর্তন করেছিলেন, ফুল মৃদঙ্গ তাল নিয়ে নয়, কীর্তন নিয়ে মধ্যে সবথেকে শ্রেষ্ঠকে ওই সুখদেব গোস্বামী। এই জন্য আমরা আপনাদের সকলকে ডেকেছি, আপনার এইসব কথা শুনুন, বাড়িতে গিয়ে সকলকে বলবেন, আর ভজনের মধ্যে প্রবৃত্তি যারা গুরুপদ আশ্রয় করেছেন ঠিক আছে, যারা গুরুপদ আশ্রয় করেন না ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা সময়তে গুরুপদ আশ্রয় করুন। জিনহনে গুরুপদ আশ্রয় নেই কিয়া হ্যায় ও ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা কে সময় কার্তিক মহিনে মে ইয়ে করেন, কার্তিক মহিনা অত্যন্ত পবিত্র হয়, বিশেষ করকে ইসকো ঊর্জ ব্রত কহতে হ্যাঁ, রাধা জি কা ব্রত কহতে হ্যাঁ, রাধা জি কো প্রসন্ন করনে কে লিয়ে হম লোক উনকা স্তব স্তোত্র পাঠ ইত্যাদি করেঙ্গে, পাঠ করব, আপনার শ্রবণ করব। আমরা বৃন্দাবনেতে, রাসস্থলী, গোবর্ধনেতে, রাসস্থলী, রাধাকুণ্ডেতে, এইসব স্থানেতে যাব, নন্দগাঁও বরসানা যাব, সেখানকার ধুলি গ্রহণ করলে ভগবত ভক্তি। মথুরাতে বলা হচ্ছে যেখানে আছে এক রাত্র নিবাসে না, এক রাত্র যদি মথুরাতে কেউ বাস করে, এক রাত্র যদি কই মথুরা মে রে আর নিরপরাধ হো, অপরাধ ন করে, এক দিন মে হরিভক্তি। সাত পুরিয়া হ্যাঁ, কাশী, কাঞ্চি, অবন্তিকা, মায়া, পুরী, কিন্তু হরিদ্বার হ্যাঁ, কাশী হ্যাঁ, দক্ষিণ মে কাঞ্চি হ্যাঁ, অবন্তিকা নগরী হ্যাঁ, সব সপ্ত পুরিয়া হ্যাঁ, কিন্তু ওহা রে বর্ষো জো তপস্যা করলে সে ফল হতা হ্যাঁ, মথুরা মে মথুরা দেবী কা স্মরণ করলে সেই ওই ফল হো যাত। इसलिए बड़े सौभाग्यवान आप लोग हैं, इसलिए एक महीना हरि कथा श्रवण करूं। और एक कथा बांग्लादेश के जहां ऐसे छेन तारा माधव महाराज अथवा कमाल कृष्ण अथवा तीर्थ महाराज एदेर काछे जे नाम रजिस्ट्रेशन करे दें, দেখুন কেবল বাস ভাড়াই 1500 লাগবে, 2200 টাকা, 200-300 টাকাতে এই পরিক্রমা বাসেতে আর অতদিন খাবারতে হয় না, এটা বুঝে রাখুন। তথাপি আমরা কিছু কনসেশন করব, কেউ কেউ ফিরাবো না, কিন্তু আপনারা চিন্তা করেন বৈষ্ণবদের আবার রেডি না হতে হবে, এই জন্য যত পারেন বেশি সে বেশি কমসে কম তো 150-2000 যাতে পরিক্রমা আমরা করাতে পারি। যদি সকল প্রিয়ে এইরকম হয় তাহলে পরিক্রমা হবে কোথা থেকে? আমি কোথা থেকে পকেটে পয়সা নিয়ে আর আজকেই আপনার সব নাম লিখিয়ে দেন যত পারেন, আপনার সব গুলি দিয়ে মাধব মহারাজ, তীর্থ মহারাজ, ও হিন্দি ইংলিশ
Today we have the good fortune to continue our parikram inside Bhajuna Mandal. Especially today we went to Adi Krishna Varaha, the original blackish form of Varahadev, and also Svetvaraha, the white complexion form of Varahadev. Also today we went to Dwarkadish, Adi Anandapadmanabh, and other places. So first is Krishna Varaha, the blackish form of Varahadev. He appeared from the nose of Lord Brahma. He had four legs, exactly like a boar. But the Shweta Varaha, the white complexion form of Varahadev, had two boar-like legs, and the bottom half was human-like. So originally, that Krishna Varaha was worshipped by Vasudev Vipra. It came to the hands of Indra. When Ravana conquered the 14 worlds, he took that deity of Varahadev to Lanka. From Lanka, it was taken by Lord Ram after he killed Ravana back to Ayodhya. After Satrughna Prabhu, the small brother of Ram, after the killing of Lavanasur, and after Satrughna was established here, he brought that deity of Krishna Varaha here to Mathura, where it has been since then. You can imagine how much ancient that deity is since the last Mandatavara. So why have we come here to perform Mathura Parikram? We have not come here to be tourists. The living entity has been bound in Maya since time without beginning. And everywhere he is searching for happiness and peace. Therefore, in which way will the jiva find happiness and peace? How can he establish his relationship with the Supreme Lord? That can be achieved by this Mathura Parikram. We are not these material bodies, which is a bag containing ingredients like stool, pus, urine, etc. We are the living entity, and Bhagavan, out of his mercy, has given this special consciousness in a human form of life. He has given Chaitanya. In this human form of life only, we get the chance to perform satasanga, we get the chance to perform bhajan, and only in the human form of life we get the chance for Guru Pada Shraya.
That is why it has been told, Turam jate tanapate anumritsuya.
That's why it has been said, even though this human body is temporary, before it falls down, before death, one must take advantage and achieve perfection in this human form of life, which is very rarely achieved. In this human form of life only, one can take shelter at the feet of a bona fide guru. In the other 8 million species of life, that facility is not available. Therefore, for 1 month, we have a chance to perform this parikram. Brajamandal, Mathuramandal is very, very powerful. And the pastimes performed here are most confidential. In parikram, we get the chance to perform all types of bhakti, beginning with Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedanam. Especially Shravanam, Kirtanam, and Smaranam are prominent. Also, we get the chance to perform the five most powerful links of bhakti, सर्वसंग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरवास शिक्षा दया मूर्ति सेवाना Therefore, we get a chance to perform all of these in this month of Kartik. Therefore, this month is called Puja Prat, or Kartik Prat, or Damodar month. This is a month belonging to Srimati Radhika. Therefore, for her happiness, to please her, we are performing in a regulated way, prayers and kirtan as an offering to her lotus feet. And for her happiness, we are traveling to these different places like Radhakund, Govardhan and Brajamandal. Therefore, for 1 month, which those who have not taken shelter, the Guru must remain very strictly under his guidance and take complete shelter, especially in this month of Kartik. Therefore, for this reason, we have called everyone from their villages and from their homes to perform this Brajamandal Parikram. There are 7 main worshipful cities in India: Kanchi, Kasi, Dwarka, Ayodhya, Saran are there. Amongst all of these, Mathura is prominent. After thousands of years of performing austerities in these other main cities, one can achieve that same result and a superior result simply by remembering Mathura. Therefore, one can stay here even one night without offense. Definitely he can get Hari Bhakti. One thing, Buddha said, only nice kirtan and cassio harmonium, this will not help us very much. We have to do bhajan in a mood like Sukadeva Goswami with pure devotion. Then this can be called sankirtan.
ज्ञान पुराम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः सनातन प्रभु परिणाम भुरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोक हे भक्ति युग्म स्मृति रघुनाथ दास त्रिजीवन कुरुत मंद मतीर दयांगरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा मित्रिला परमिष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धों के गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत गुरु साक्षात प्रणाम करना तत्पश्चात मैं शिक्षा गुरुपाद वर्मा परिपराजित आचार्य चित्रदर्शी स्वामी श्री सुमधुक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण स्वर में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान कर उपस्थित चित्रदर्शी पादगण वैष्णव वैष्णव सभी को चरण सम्राज प्रणाम करता हूँ। आज एक विशेष स्थिति है, आज का दिन को उपलक्ष्य करके हमारे संप्रदाय में तीन तीन वैष्णवों का आज तिरुभाव महामहोत्सव है। उसमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज तिरुभाव महामहोत्सव है। फिर श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जद्यपि हुए राधारानी नित्य परिकर है रति मंजरी, लेकिन उनका जीवन ऐसे कि तिब्बत जीवन है हुए हम लोगों को एक साधारण साधक किस रूप में साधन बदल करे, हुए एक साधारण हुए जितना परिक्रमा होते हुए भी एक साधारण साधक रूप में उतर करके
हम लोग को किस तरीका साधन भजन करनी चाहिए, उन्होंने ये सब चीज को सिखा दिया है। और उन्होंने यह सिखा दिया, अगर सचमुच से इसको भगवत भक्ति में रुचि हो, भगवत भक्ति में रुचि होने पर कैसे स्वाभाविक रूप में जीवन में ईश्वर का प्रति उसको वैराग्य आता है, ये भी उनके जीवन में एक बहुत बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारे गीत गोविंद में कभी जय देश एक बहुत बढ़िया श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक में कहते हैं, कहते शास्त्री माधु की चिंता न भवती सर करे पर कसाके द्राक्षे द्राक्षंति के सुमामृतम मृतमति क्षीरम निरम रसस्ते माक्रंद क्रंद कांताधर न तुला गच्छति भाव जावत श्रृंगार शुभमिव जय देव वैद्धति वाचा। श्री गीत गोविंद में कवि जयदेव कहते हैं, अगर सचमुच से भगवत भक्ति में इसको अगर रुचि हो जाए, अगर सचमुच से राधा कृष्ण का प्रेम रस को कोई आस्पादन करे तो कहते तो उसको जीवन में क्या देखने को मिलता है। कहते हैं साध्वी माधवी का चिंता न भवती, माधवी मतलब होता है मधु शहद। कहते शहद में जो रस है उसमें जो मिष्टता है, कहते साध्वी माधवी का चिंता न भवती। कहते कृष्ण भक्ति रस को सामने मधु का जो मिष्टता वो भी उसको सामने फीकी पड़ जाते हैं। साध्वी माधवी की चिंता न भवती। कहते सरकरे, कहते सरकरा को बहुत अच्छा मीठा कहते हैं। कहते हे सरकरे तू कर्कशासी, तू तो कर्कश हो गया हो, तुम तो एकदम कड़ुआ बन गया हो कृष्ण भक्ति के सामने। और कहते द्राक्ष द्राक्षंती, कहते हे द्राक्षा रस, कहते द्राक्षा रस एक तरह का अंगूर रस से एक तरह का वो रस बनता है, जिस रस को जगत में बहुत अच्छा रस कहते हैं। कहते द्राक्षा द्राक्षंती, कहते हे द्राक्ष रस तेरे को अभी कौन देखेगा, अभी तेरे को जगत में कोई नहीं देखेगा। द्राक्षती के स्वामृत मृतमसी, जगत को अमृत को बहुत बड़ा कृष्ण मानते हैं। जगत में सब लोग कहते अमृत जैसे चीज है, स्वर्ग में जाओगे तो अमृत पियोगे, लेकिन ये कहते हैं अमृत तो मृतमसी, कहते हैं अमृत तू तो मर गया, तू तेरे को कौन पूछने वाले जगत में, तेरे को अभी कोई पूछने वाले नहीं। कहते क्रांता क्रांता धरा, इसी जगत में सर्वश्रेष्ठ सुख स्त्री संघ को मानते हैं, और स्त्री का आधा अमृत को पान को ही जगत में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहते क्रांता क्रांता धर, कहते हे कांत का जो अधरा अमृत, कहते तू तो कृष्ण भक्ति रस को सामने अगर किसको राधा कृष्ण रस प्रेमामृत अगर आस्वादन विषय हो, तुमको जगत में कौन पूछेगा। रघुनाथ गोस्वामी जैसे उन्होंने शादी कर दिया, पुस्तक को देखे ही नहीं, इसलिए क्रांत क्रांत धर मातुला भाव गति, इसलिए जावत श्रृंगार स्थान शुभ में वो जय देव से वैद्य वाचा। इसलिए कहते जय देव का जो सुंदर सुंदर पद्यावली है, जो रसात्मक का पद्यावली है, अगर जीवन में कोई एक बूंद अगर उसका आस्वादन का विषय हो, जगत में सारे रस उसको सामने फीकी पड़ जाती है, इसको कवि जयदेव कहते हैं। इसलिए ये जितने सारे लक्षण हैं, कहते हमारे ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में ये सब एक एक करके सब चीज दिखता है। लेकिन सचमुच से इतने सारे वैभव के, हाँ वैभव रहते हुए भी कैसे उन्होंने सारे वैभवों को तुच्छ करके कैसे भगवत भजन किया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनका जो साधारण जीवन है, सर्वप्रथम वो शिक्षा देते हैं भक्ति भगवत भक्त सांजन परिजाय। अगर जीव को कभी भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती, जितने भी नित्य परिकर है, लेकिन उनके जीवन में सर्वप्रथम फैजा ठाकुर और अद्वैत आचार्य का उनको संग प्राप्त होता है। साधारण रूप में दिखाते हैं, जितने भी उनको तुलना करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी को उनका कोई स्थिति तो अद्भुत स्थिति है, लेकिन तब भी साधारण साधक के लिए दिखाते हैं कि तो उनका संग से माना उनको भगवत चरण में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में उनका अनुराग होता है। अभी भगवत चरण में अनुराग होने पर स्वतः भक्ति परेशान होगा विरक्ति यदि भगवत भक्ति में परस का अनुमति होने पर कभी जो विरक्ति है वो तृतीय स्थिति में भक्ति परेशान भाव और विरक्ति। अगर विश्वनाथ चतुर्थी कहते हैं कहते हम कोई भजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं कहते लेकिन विषय का प्रति संसार का प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हो रहा है तो समझनी चाहिए दाल कुछ बाला है भजन हमारे सही सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में हम देखते हैं उनको भगवत भजन में श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरिचरण कमल में जब उनको प्रेम प्रकट होता है उनको संसार का हमारे वैभव उनको सामने फीकी पड़ गया सबके सब तुच्छ मानते हैं और घर बार छोड़ छाड़ करके महाप्रभु के चरण में वो बारम्बार आते हैं और उनको पकड़ पकड़ करके और बारम्बार उनको पिता जी ले जाते हैं तो महाप्रभु उनको कुछ शिक्षा देते हैं क्या देखो स्थिर है या भरे जाओ ना हो बातुर क्रमे क्रमे पाएगी भगवत सिद्ध गुरु अंतर निष्ठा कर लोग तो अच्छे व्यवहार अच्छी रात कृष्ण समाज करेंगे रघुनाथ रघुनाथ। कभी कभी हम लोग पागलपन कहते हैं हाँ जैसे पता है गुस्सा भाई कभी कभी हमारे अंदर में कभी साधन के जीवन में साधन भजन में इतने उत्साह दिखता है पहले साधन भजन में मान समझो भगवान को प्राप्त कर लेंगे लेकिन वो उत्साह नहीं कभी कभी धर्म करवा दूसरे संग्रह नियम समा करते करते कहां से कहां उतर आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या देखो रघुनाथ स्थिर है या घर जा महा बाबुल घर में जाकर के युक्त वैराग्य पूर्वक फल वैराग्य नहीं युक्त वैराग्य पूर्वक भगवत भजन करो। भगवत भजन जब सही सही करेंगे जब भगवत चरण में हमारे अनुराग धीरे धीरे बढ़ेगा हाँ उसी समय कैसे ये संसार तुम्हारा छूटेगा कैसे तुम भगवत चरण में आओगे तत्काल छल कृष्ण तुम्हारा जोगाड़ उसी समय किस रूप में भगवत भजन करने के लिए आओगे तब उसको स्वयं भगवान हृदय से अंतर जात रूप में तुमको वो सब कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए घर में जाओ अभी कहते लोकवाच्य व्यवहार अंतर निष्ठा कर लोकवाच्य व्यवहार बाह्य लोक व्यवहार लेकिन अंतर में निष्ठा को रखो। लेकिन जो लौकिक जो रीति है हाँ संसार में कैसे रहनी चाहिए वो करनी चाहिए लेकिन केवल ऊपर से दिखाने के लिए केवल ऊपर प्रेम करो जैसे श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वो जो श्लोक लिखते हैं पालागिनी प्रिय कर्मसु इसलिए ऊपर से केवल करो लेकिन हृदय से संपूर्ण रूप में तुम्हारा प्रेम प्यार को गुरु कृष्ण और महाप्रभु का चरण में रखो। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर के अभी महाप्रभु का उपदेश का अनुरूप कैसे घर में कैसे क्रिया को करते हैं फिर उनको कोशिश करते हैं कि एक काम करो जगत में सबसे जगत में बंधन का कारण होता है स्त्री में कभी उसको सुंदरी एक स्त्री को साथ में शादी करा दो कभी स्त्री अवसर समो मानो कि अवसर जैसे एक स्त्री को साथ में उसको शादी करा दिया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ कृष्ण रक्त भक्ति अगर किसको आस्वादन का विषय हो लेकिन वो स्त्री को तरफ में देखते हैं और उसके कोई मतलब नहीं है हाँ फिर कहते उसको हाथ प्यार बांध तक रखो ये बारंबार भाग जाता है। कहते जगत में विशेषकर दो ही वस्तु बहुत ही बंधन का कारण होता है एक मतलब पैसा है और दूसरा स्त्री है। कहते इसको पास में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य है और स्त्री कहते स्त्री अवसर जैसे स्त्री है ये चीज सबसे बड़ा बंधन है। रघुनाथ दास का पिता कहते तो पागली जिसको ये सबसे बड़ा जो बड़ा बंधन है अगर ये इसको बांध नहीं पाया तो कहते चैतन्य बांधते तो सारे तेरा के पाए अगर महाप्रभु का प्रेम में कोई एक बार डुबकी लगाते हैं तो उसको कौन बांध के रख सकता है। अगर रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में फिर बहाना बना करके उन्होंने एक महीना रास्ता को उन्होंने केवल 12 दिनों में उसको अतिक्रम करते हैं और दिनों में केवल 12 दिनों में केवल 3 दिन किसी तरह से कुछ खा करके जगन्नाथपुर में पहुंचते हैं। जो जगन्नाथपुर में पहुंचे महापुर का रघुनाथ भगवान के तुम्हारे ऊपर में विशेष कृपा है क्योंकि ये जो विषय विष्ठा है ये विषय एक तरह का विष्ठा है भगवान का कृपा नहीं होने पर ये विषय विष्ठा से कोई नहीं निकल सकते हैं। भगवान विशेष तरह पर कृपा है क्योंकि तुम संसार को छोड़ करके तुम भजन करने के लिए आ गए हो तब उनको स्वरूप धाम समाज में दे देते हैं, इसलिए उनका एक नाम है स्वरूप
रघु।
हाँ, स्वरूप दामोदर को ललिता है और ये रति मंजर है। अभी उनको हाँ साथ उनको उपदेश अनुरूप अभी ये साधन भजन करते हैं। एक दिन रघुनाथ गोस्वामी महाप्रभु को कहते, प्रभु मैं चाहता हूँ आपका मुखार बिंद से ही डायरेक्ट कुछ उपदेश श्रवण करना चाहता हूँ, इसलिए आपका मुखार बिंद से ही कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने अपना मुखार बिंद से उन्होंने चार लाइन उन्होंने उनको उपदेश दिया है। चार लाइन नहीं मानो, क्योंकि सारे शास्त्र है, सारे शास्त्र का निचोड़ उन्होंने केवल चार लाइन में उन्होंने बता दिया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, मर्कट बैराग्य ना कर लोग दिखाया, जथा जो विषय भुज अनाथ करिया, ग्राम कथा ना करे, ग्राम कथा ना सुन गए, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करी। रघुनाथ ग्राम्य कथा ना कहिवे, ग्राम्य कथा ना सुनवे, क्योंकि जो ग्राम्य कथा बोलना नहीं और ग्राम्य कथा सुनना नहीं, क्योंकि सबसे हमारा बड़ा व्याधि है। अगर हमको कोई ग्राम्य कथा सुनने को मिले हमारा काम खराब हो जाता है। अगर हरिचर्चा नहीं हो, भगवत कथा आपको फिर हो, वर्तमान ठाकुर कहते हैं झूले झूले कला से बात कंपनी भी आ जाती है। लेकिन अगर कोई इधर उधर का चर्चा हो, ग्राम्य चर्चा हो, भले ही हम यहाँ पर है लेकिन वहां पर कोई बैठ करके कोई ग्राम्य चर्चा करते हैं, लेकिन वो ऐसे है दूर से रहने पर भी पता चल जाएगा वहां पर कुछ हो रहा है। हम क्या करेंगे अगर यहाँ हरी कथा होता है छोड़ करके, या ग्राम्य कथा होता है वहीं जाएंगे, लेकिन जब हरी कथा होता है मर जाएंगे। ये हमारे एक बहुत बड़ा बीमारी है। हाँ, इसलिए कहते ग्राम्य कथा ना बोलिवे, ग्राम्य कथा ना सुनिवे, कहते सुनना भी नहीं और बोलना भी नहीं, क्योंकि हम जो सुनते हैं और जो बोलते हैं उसी में ही हमारा आवेश होता है। अगर हम इधर उधर बोलेंगे तो हमारा आवेश ही गंदी तरफ में जाएगा। इसलिए अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से विवर्जन, इसलिए हमको जीवन में भगवत भक्ति का जो अनुकूल है कहते संकल्प मतलब प्रतीक्षा करना, आज से हम भगवत भजन का जो अनुकूल वस्तु है जीवन में उसको ही ग्रहण करेंगे, जीवन में जो प्रतिकूल वस्तु है हम जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। और मर्कट बैराग्य नात्र लोग दिखाया, कहते लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत बड़े साधु है, इसको दिखाने के लिए हमको बंधन जैसे बैराग्य नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमको जथा योग्य हो नहीं तथा रो, हमको जितने शरीर के लिए जरूरत है उतना ही ग्रहण करनी चाहिए। हमको ज्यादा ग्रहण करेंगे भोगी बन जाएंगे, कम बनेंगे करेंगे तो परमात्मा से चुत हो जाएंगे। और जो संसारी जो जितने भी जगत में जितने सारे विषय वस्तु है सब कृष्ण संबंध जान करके सबसे सब कृष्ण भजन के कृष्ण सेवा के अनुकूल रूप में जान करके हर वस्तुओं को हमें भगवत सेवा में लगानी चाहिए। और ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करिए, मन मन में राधा कृष्ण की सेवा को मन मन में करना। महाप्रभु के उपदेश रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी पहले तो उनको पिता का दिया हुआ कुछ वस्तु को लेकर के महाप्रभु निमंत्रण करते थे, लेकिन देखा महाप्रभु उसमें ग्रहण तो करते हैं लेकिन महाप्रभु संतुष्ट नहीं। कहते क्यों? कहते जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने आया है, कहते कम से कम उनके अंदर में यह विश्वास रहना चाहिए। हाँ, रसी सचिव विश्वास गुप्तुर से वर्णन करना, भगवान का हम भजन कर रहे हैं, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ ब्रांड बैलेंस कर देंगे। कहते अभी तो गुरुदेव है, अगर गुरुदेव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा भविष्य तक क्या होगा, इसे अभी से तो कुछ जमा कर रखनी चाहिए, नहीं तो गुरुदेव है खिलाड़ी खिलाड़ी बाद में क्या होगा मतलब, इसका मतलब क्या होता है। फिर मतलब है अभी हमारा भजन सही नहीं, हम भगवान के हृदय से उतारते नहीं, भजन का अनुभूति नहीं, इसलिए भजन में कभी हमारा अंदर में, लेकिन जब सचमुच से हम भगवान भजन करेंगे कभी जो रक्षित विश्वास गोत्रित वर्णन तथा ये भगवान स्वयं प्रदान करेंगे। भले ही हम जितने विषय वैभव को संग्रह कर लेकिन अगर भजन का शक्ति नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर भजन शक्ति रहे सारा दुनिया हमारा चरण में आकर लौटेगा। हाँ सारा विश्व वैभव हम देखो महाराज को देखिए महाराज कैसे अकेले सारा विश्व ब्रह्मांड में भजन का प्रभाव से कैसे भजन। इसलिए हम लोगों को गुरु वैष्णव का आदर्श उपकरण करनी चाहिए। हाँ इसलिए कभी कभी हम विशेष संग्रह करने के लिए चाहते हैं क्योंकि सचमुच से गुरु वैष्णव से गुरुदेव जो वस्तु देना चाहते हैं वो क्या देना चाहते हैं गुरु प्रेम देना चाहते हैं भगवत भजन का दिव्यता देना चाहते हैं भगवत अनुभूति देना चाहते हैं। अगर सचमुच से गुरु जी से अगर हम वह वस्तु को प्राप्त कर सके फिर तो समझो कोई चिंता नहीं। अगर गुरु जी से अगर वह वस्तु ग्रहण नहीं कर सके केवल ऊपर का विषय वैभव को लेकर के हम मारपीट दंगा और उसमें प्रतिष्ठा पाने के लिए करें जीवन में कुछ भी होने वाले नहीं। अगर भजन नहीं करोगे तो जीवन में कोई पूछने वाले नहीं। अगर हम भजन करेंगे तो भगवत भक्ति करेंगे तो भक्ति स्थिर भगवान जति सिया तई मैंने सिंहेश्वर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदाजलि सर्वदस्मान धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। अगर हृदय में भगवत भक्ति अगर प्रकट हो जाए विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा शरण में अपने आप लौटेंगे क्योंकि तत्व तो हमें भगवत भजन में हमारा विश्वास होनी चाहिए। इसलिए महाब्रह्मानंद फिर शिक्षा देने के लिए एक शुद्ध बैरागी के लिए जो आदर्श रूप में होनी चाहिए हम भजन कर रहे हैं पिताजी हमको भेज रहे हैं पैसा पिताजी तो भगवान भजन पर विश्वास किया है इसे महाप्रभु का भावना प्रकरण छोड़ दिया। फिर उन्होंने बाजार में आनंद बाजार में फिर वहां पर जाकर उन्होंने भिक्षा किया फिर बाहर भी खड़े होकर भिक्षा किया महाप्रभु उसको भी जेल कर दिया। कभी तो बेहतर कोई आएगा तब तुमको देकर जाएगा और तुम खाओगे फिर भजन करोगे फिर तुम्हारा भजन में तुम्हारा विश्वास कहां भगवान तुम्हारा विश्वास कहां है। इसलिए महाप्रभु ये चीज को यह भाष्य करके यह चीज पर भी महाप्रभु ने अदर नहीं किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी इसको भी समझ करके यह चीज भी रघुनाथ दास गोस्वामी ध्यान देते हैं। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर के जो चीज को दया भी नहीं खाते हैं हाँ उसको भी धोधा करके सर से नमक दे करके उसको भी रघुनाथ दास गोस्वामी उससे भी ग्रहण करते हैं। फिर अपना भजन आदर्श को दर्शन कराते हैं। फिर उन्होंने जब महाप्रभु धीरे धीरे जब अंतर ज्ञान इसलिए उनका जो कथित साधारण साधन उनका है एक साधन लेकिन उसको सिद्ध उनका तो कैसे राधा कुंड में आकर के कैसे पुष्प आरती और उसको कंठ को साथ में उनका जो भजन आदर्श जो राधा कुंड में और वहां पर जो स्तवावली रूप जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है और उन्होंने ललित माधव नाटकों को बैठे हुए कृष्ण देह में कैसे सरभराते हैं और रूप गोस्वामी कैसे दान के लिए कमल ग्रंथ लेकर के उनको सांत्वना करते हैं और जो विराम पुष्पांजलि जो ग्रंथ को कैसे हुए राधा रानी को चरण में एक एक श्लोक को एक पुष्प रूप में कैसे अर्पण करते हुए भजन की जो दिव्य उत्कंठ और सिद्ध देह की जो साधन की वहां दिखाते हैं तमेवास्मी न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तम नयामि शरणार्थी में और त्रि संध्या स्नान करते हुए जो उनको संख्या पूर्वक नाम गान नदी भी कालावसान करते हुए जो भजन की जो अत्यंत तीव्र उत्कंठ है वे तो उन्होंने एक साधक जगत को एक बहुत बड़ी दिव्य वस्तु देकर गए। हम बोलते हैं हमारा गुरु जी रूपानुगर है मतलब रूपान को वर्ज्य है लेकिन रूपान को वर्ज्य के वर्ज्य कौन है लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जो अनर्पित चरित्र प्रेम देने के लिए आए थे। अगर हमको अनर्पित चरित्र प्रेम क्या है अगर यह चीज को समझना तो रघुनाथ दास गोस्वामी का बिलासपुर का पुष्पांजलि और इस कवावली में जितने सारे अष्टक यह चीज को हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हम हमारी गौरी वैष्णव में क्यों आए महाप्रभु जगत में क्या देना चाहते हैं कई यह चीज समझ पाएंगे। आज उनका त्यौहार है कोई हम लोगों पर भी कृपा करे उनका भी कृपा और महाराज जी अगर हमारा हम लोग को अगर कृपा करें इनका कृपा वहां तक पहुंचेगा अगर फिर अगर कृपा हो फिर कभी ना कभी हम लोग वह रस की एक बूंद आस्वादन करने का हमारे सौभाग्य प्राप्त होगा। आमीन बोल करके अपना कुछ पानी
खड़ी आ गई आपको बहुत मिस किया
तो कोई बुलाने नहीं आया नहीं तो जाने से अपमान होता आप समझिए आपने कहा कि دوسرے کوئی آ کر کے کہتا ضرور چاہتا
ہوں. ماجی کہہ رہے تھے میرے سسٹر لوگ چاہتے تھے لیکن جی بی سی نہیں چاہا بالکل آپ کو, اس لیے وہ لوگ نہیں کرتے سر کچھ.
میں ہم لوگوں نے ویٹ کیا 12:30 بجے تک.
کون ویٹ کیا؟
ابھی مہاراج جی کے جو شیشے تھے
ہم کو کوئی آ کر کے کہتا.
ہم لوگوں نے خود ان کو سمادھی دیا سر. آپ کی آگیا سے کیسے بتایا آپ نے
ہم کو یہاں آ کر کے کوئی بھی کہتا تو میں جاتا, میں تیار بیٹھا تھا. ہمارے پریے متر تھے, بنتی تھے, میں نے ان کے سمبندھ میں بتلایا سب کچھ. اس پانڈے میں یہی پتا چلا کنتو میں اپمان ساگر اسکول والے ہم کو کچھ بھی نہیں پوچھا. آپ کے گرو بھائیوں نے بھی آ کر کے ہم کو ملا, اس لیے میں گیان پیش کرتے ہیں. میں جاؤں گا لیکن اس پانڈے میں بھی آؤں گا.
About Raghunath Das Goswami, his life and teaching in brief.
English
name, he will be speaking.
Of Srila Raghunath Das Goswami, it is an example for all the Vaishnavas. Although Raghunath Das Goswami, he is an eternal associate, Nitya Parikar, of Sri Gauranga Mahaprabhu and Sri Sri Radha and Krishna, as Sri Radhi, Radhi Manjari. She descended into this world as Sri Raghunath Das Goswami Pada. But the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they are all Nitya Siddha, but they come into this world and they show us by their life example how to be sadhakas, how to follow this path of pure devotion, and how to attain the ultimate attainment of Krishna Prema, which Chaitanya Mahaprabhu has brought. So Srila Raghunath Das Goswami's entire life is an example for all sadhakas, how to follow, how to progress step by step in a very healthy way, so that one does not haphazardly try to jump forward and suddenly attain the ultimate goal without being qualified. So Srila Raghunath Das Goswami, he was born into a very exalted family, which was also very, very wealthy, and they were living in Gaura Mandala Bhumi, in the land of Chaitanya Mahaprabhu, West Bengal. So Raghunath Das Goswami's parents were vastly wealthy landowners, and Raghunath Das Goswami from early childhood was like a very wealthy prince. And he was given all opulence in his childhood and youth. But what is very important in his life is that in his childhood he also had very exalted sadhu sangha. Srila Namacharya Haridas Thakur, he used to come there to visit the house of Govardhan Majumdar, the father of Srila Raghunath Das Goswami. Haridas Thakur used to sit him on his knee as a little baby, as a little child, and chant Harinam to him. Srila Advaita Charja used to also visit. And in this way, Yadananda Acharya, also very exalted personality, was the family guru of Srila Raghunath Das Goswami. So all throughout his childhood, he had very high sadhu sangha. This is the process. Without sadhu sangha, it is not possible for a living entity to actually advance to the ultimate goal of life. But by attainment of sadhu sangha, bhaktistu bhagavad bhakta sangeena parichayate, by attainment of proper exalted sadhu sangha, by attainment of Vaishnavas who are rasik and who are tatvakya, then one can have an opportunity to attain pure Krishna bhakti in this life. So Srila Raghunath Das Goswami, with the blessings of these great acharyas, had this seed implanted within his heart. And when he initially had the opportunity to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu, when Chaitanya Mahaprabhu came to Bengal, Raghunath Das Goswami became completely mad. He wanted to immediately leave home. He wanted to go with Chaitanya Mahaprabhu. But he was bound by the ties of family and society and wealth. And they had to try to keep him there in his home. Raghunath Das Goswami, even he tried to escape from his home so many times, but they were binding him with chains and ropes. But finally, after so much attempts, one day Sri Nityananda Prabhu, he came to a nearby village, Harihati. And when Nityananda Prabhu came there, Sri Raghunath Das Goswami was able to get permission to go and have his darshan. And when Sri Raghunath Das Goswami came near to the place where Nityananda Prabhu was sitting, next to the Ganga, underneath a very beautiful banyan tree, with all of his associates surrounding him, then from a distance, Raghunath Das Goswami paid his obeisances, and Nityananda Prabhu, he saw him from a distance, and he called to him, and he said, "You thief, come here right now, you thief." And Raghunath Das Goswami very shyly was standing there, and he came toward Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu kicked him in his chest with his lotus feet. And then Nityananda Prabhu, he explained to him, "Why are you trying to go to Gauranga Mahaprabhu without going through me? because Chaitanya Mahaprabhu is my property. If you want, you cannot be a thief, and you cannot approach him without my blessings. So then he told Raghunath Das Goswami that you must have a penalty. What is the penalty? Now you will have to perform a very great festival, and you will have to feed all the Vaishnavas. So that famous festival was called Chiradahi, where there was flat rice and yogurt and so many beautiful sweets and fruits. And Raghunath Das Goswami arranged for this huge festival to feed thousands and thousands and thousands of Vaishnavas. And at that time, he received the blessings of Nityananda Prabhu. Then he went back to his home. And when he went back to his home at that time, Srila Raghunath Das Goswami, internally, he was completely attached to Krishna. But externally, he took care of all of the details of the social duties and family obligations. And for 1 year, like this, he very expertly acted like a perfect materialistic person, but internally, he was completely cultivating his attachment and his separation move from Chaitanya Mahaprabhu. So, although his family, they were constantly trying to keep him from escaping, even by chains, but now they became a little bit confident that he would not run away. So one evening they allowed him to go with his Gurudev, Yadunanda Acharya. And when he went with his Gurudev, at that time he requested his Gurudev that now I want to leave, now I want to go to Mahaprabhu. And Yadunanda Acharya gave his blessings, and Raghunath Das Goswami, without any guards, he began to immediately run through the forests, through the pathways, not on the main roads, and he began to go toward Jagannath Puri. And at that time, walking by foot to Jagannath Puri, oh, it would take at least 1 month. But Srila Raghunath Das Goswami was running and constantly mad in Krishna prema, in the mood of separation from Mahaprabhu. And in 9 days, just eating a few chickpeas along the way, getting some milk from any cows, he finally reached Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. And at that time, when he reached Mahaprabhu, and he paid his dandavat pranams, Mahaprabhu told him, oh, you have received Krishna's unlimited mercy, because he has delivered you from this pit of stool, like you have fallen into the pit of stool of this materialistic world of family and society. And Krishna has so mercifully delivered you from this. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu, he delivered Srila Raghunath Das Goswami into the hands of Srila Swarup Damodara Goswami. And in Krishna Lila, Swarup Damodara Goswami is none other than Lalita Devi, one of the prominent Ashtasakis. And Srila Raghunath Das Goswami is Rati Manjari, serving under in that camp. So Srila Swarup Damodara Goswami took Raghunath Das Goswami as his very own. And for all the years that Raghunath Das Goswami lived in Jagannath Puri, oh, Swarup Damodara Goswami gave him all instructions and all teachings. So Raghunath Das Goswami, he became known as Swarupair Raghu. That means the Raghu of Swarup. And at one time, Raghunath Das Goswami, he desired that he would receive some teachings from Gauranga Mahaprabhu's lotus mouth directly. And he begged for Chaitanya Mahaprabhu to give him some instruction. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu agreed, and in very essential verses, Chaitanya Mahaprabhu taught him like 4 different verses. Gramya kata na shunide, gramya varta na pahide, balo na kaide yaar, balo na pahide, amari manadra, vaya, krishna dam saya labo, rajay radha krishna, manase paribo. So he told him, don't engage yourself in hearing Gramya Kata. Gramya Kata means ordinary materialistic topics that are dealing with this mundane world. It is very contaminating to associate with that element. Because if you want to cultivate pure devotion, pure bhakti, this will be like poison, always hearing Gramya Kata, ordinary topics and mundane different types of gossip and so forth. And also do not engage yourself in speaking any of these topics. and always. You should be very, very simple in your life. Don't dress yourself luxuriantly. Don't eat luxurious foodstuffs. Always be very, very humble. Constantly taking the name of Krishna, Krishna Nam Sada Labo, and in your core of your heart, living in Braja, always serve Radha Krishna. So in very essence, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave Raghunath Das Goswami these instructions. So Raghunath Das Goswami, he exhibited, while he was living in Jagannath Puri, very high level of renunciation, step by step by step. He was renouncing opulent eating of foodstuffs, and sometimes he was only begging, sometimes he was taking from the free kitchens, sometimes he was standing in front of the Singhadwara gate and waiting for anyone to give him some alms, and gradually he reduced his eating and his attachment to opulent foodstuffs to the point where one day he was taking the rice which was had been like 3 days old. It was discarded into a big pile outside of the Jagannath temple. Already it was rotting, but he took that rice and he washed it with water, and there's some little inner kernel of that rice. He now began to eat that, and that was what he was subsisting on, the Jagannath Mahaprasad, of only this inner kernel of rice. So Chaitanya Mahaprabhu, one day, he found out that Raghunath Das Goswami was doing this, and he personally came there to that place. When he came there, he said, "Oh Raghunath, I have heard that you are observing very great festival. You are eating very wonderful opulent foodstuffs of Jagannath Day, and you are not inviting me?" And Raghunath Das Goswami was feeling embarrassed, and Chaitanya Mahaprabhu snatched from his hand this rice, and he began to eat this kernels of rice, and became overwhelmed with transcendental ecstasy. So in this way, Raghunath Das Goswami exhibited such severe renunciation. And for this whole time period that Chaitanya Mahaprabhu was living in Jagannath Puri, Raghunath Das Goswami was there. He was keeping notes of all the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, constantly keeping a diary. And that diary actually was used by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad to write Sri Chaitanya Charitamrita, all the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, which is based upon this diary of Srila Raghunath Das Goswami. So after Chaitanya Mahaprabhu performed his disappearance pastimes from this world, then Srila Raghunath Das Goswami was in utter anguish of separation. He could no longer maintain his life. Swarup Damodar Goswami had left. Sri Gadadhar Pandit Prabhu had left this world. So now Raghunath Das Goswami, he could not find any possibility to go on living, and he decided that he would go to Braja, and there he would end his life by jumping from Govardhan and ending his life. But when Raghunath Das Goswami came to Vrindavan, there he met Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan Goswami. And there he saw within them the complete living manifestation of Chaitanya Mahaprabhu. So now Raghunath Das Goswami, he became the disciple of Rupa and Sanatan. And Raghunath Das Goswami was treated like their very dear intimate brother, and they gave him their association and blessings. And Raghunath Das Goswami began to live on the banks of Radhakunda. And there Srila Raghunath Das Goswami exhibited the highest manifestation of transcendental ecstasies in the separation mood from Srimati Radhika. And he exhibited what is the ultimate attainment of Radha Dasya. He wrote the great literature, Vilapa Kusha Manjali, in the end offering the prayers from his heart in utter separation mood from Srimati Radhika. And there he expressed, Asha Varaya Ramrita Sindhu Mayai Kutam Chit Kalo Vayati Kamita Kinda Sampratam Hi. He told that, "Oh my dear Srimati Radhika, if you do not be merciful to me, at this very moment, I don't know how I will be able to go on living. And even this Braja, which is as dear to me as my life itself, I cannot stand to live here anymore. And even Krishna himself, I don't want if I cannot have your divine service of your lotus feet." So in this way, he prayed, Tavaivasmi, Tavaivasmi, Najivami, Tvayavina, Iti Vidyaya Radhe Phan, نئے مام چرناتی کے شری رگناتھ داس گوسوامی پاد کی
بولو تالے سنکھے پہ دو چار دن
چندرائے رادھکائے تدارے کرشنائے کرشن وستائے تدورتائے نمو نمن
سروپرتھم اشمدیہ پروارا کتر و گروپات پدھے اشنک گوٹی دنڈوت پرانتی گیاپن کری تدنتر اوپستھت پوجنیہ سنیاسی وند समस्त वैष्णव सज्जन माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम
अपना श्रवण कर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जीवन चरित्र एवं प्रहार भजन आदर्श एवं कृपा करुणा एवं आज के आरव विशेष तिथि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादे से रुभाव তিনি শ্রী চৈতন্য চৈতামেদের বর্ণনায় বললেন কি শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যা রাস চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ যিনি ধামটপুর নিবাসী নবদ্বীপের সন্নিকটে কাটুয়ার সন্নিকটে ধামটপুর গ্রামেতে তাহার আবির্ভাব হয় বাড়িতে এক সময় মীন কেতন রামদাস শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগৃহীত পাত্র তো শ্রী মীন কেতন রামদাস তিনি নিত্যা ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গৃহে আসেন সেইখানে ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্তন করেন সেই শুনে তাহার ভাই কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা অত্যন্ত বিরোধ করেন এবং নিন্দা তিরস্কার করেন সেই সমস্ত দেখেই তাহারা কীর্তন বন্ধ করেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেলেন বলে নিত্যানন্দ প্রভুর অপমান তিরস্কার কোনদিন সহ্য করা যাবে না এমন সময়ে কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি দুঃখী হয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসলেন রাত্রিকালে এক বৃক্ষ তলে শয়ন করেছেন এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভু তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন বললেন কি কৃষ্ণদাস তুমি আমার জন্যই আজকে গৃহ পরিত্যাগ করেছ অতএব আমি আজ্ঞা দিচ্ছি তুমি বৃন্দাবনে যাও বৃন্দাবনে গেলে তুমি সবকিছুই পাবে এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর করুণায় শ্রী কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বৃন্দাবনে আছেন তিনি লিখলেন কি যে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় পাইনু বৃন্দাবন দর্শ যাহার কৃপায় পাইনু গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন পুরুষের পিঠ হইতে মহিষে লঘিষ্ঠ মোর নাম যেই দয় তাহার মোর নাম যেই লয় তার পাপ ভয় মোর নাম যেই শুনে তার পুণ্য ক্ষয় এমন নির্ভিন্নে বলে কেবল দয়া করে এ নিত্যানন্দ বিনাশ জগত মাঝারে এই প্রকারে নিত্যানন্দ প্রভু করুণার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন এবং দিনহীন ভাবে ভক্তির পরাকাষ্ঠায় দিনহীন ভাব সেই প্রবল দৈন্য সহকারে তিনি নিজের ভাবের অভিব্যক্তি করেছেন
আপনারা রঘুনাথ দাস গোস্বামী আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কিছু জীবন চরিত্র এবং শিক্ষা এবং ভজন প্রণালী শ্রবণ করলেন আর আজকে দিন মে রঘুনাথ ভট্টজী কা তিরোভাব হয় বেরূপ গোস্বামী কে সভা মে ভাগবত কে বক্তা থে বড়ে স্বর সে মধুর স্বর সে ভাগবত কা উচ্চারণ করতে আর উসকি এসি ব্যাখ্যা করতে বিরহজনক মিলনজনক जी और तो क्या रूप गोस्वामी भी मूर्छित हो जाते और लोग रोते, आंसू आते, नाक से लाला गिरता और रूप गोस्वामी कैसे चुपचाप बैठे हैं। लोग समझते कि बैठे हैं, देखो जैसे उनके शरीर में प्राण है कि नहीं, रुई दे करके देखते और रुई कफा एकदम जल जाता, हाथ में खोखले आ जाते। कहते हैं कि थोड़े से पानी में मछली पानी को गंदा कर देती है, अथा पानी में कुछ नहीं, कोई भाव ही नहीं होगा। उसी तरह से रूप गोस्वामी का हृदय महान अथा, उसमें ये सब भाव गंभीर रूप से रह जाते थे, वो ऊपर में प्रकट नहीं करते थे। तो आज उनके चरणों में भी हम लोग पुष्पांजलि दे रहे हैं। वी आर गिविंग पुष्पांजलि इन द लोटस फीट ऑफ श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आज आप लोगों से एक निवेदन है, एक निवेदन हमारे पंडा जी चतुर्वेदी जमुना प्रसाद सात आठ दिन से मथुरा में हम लोगों को दर्शन करा रहे हैं। अकेला दर्शन यदि आस्तेन तले 200-400-500 टाका एक लोकर नहीं दी तो पंडा। एक जन हमारा निवेदन जे कुछ कुछ पंडा के दें, एखन ब्रह्मचारी लोग सब उठे जाए। यू आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू गिव सम डोनेशन फॉर पंडा बिकॉज ही इज ट्रेवलिंग विथ अस एंड ही शोइंग दी प्लेसेस विथ अस फॉर 4, 5 or 6 डे। वी शुड काइंडली गिव हिम सम डोनेशन। ब्रह्मचारी ओ यू शुड गो एंड टेक सम यू शुड गो देयर ए ओजी के उछले। सभी लोग कुछ कुछ देंगे। एवरीवन टू गिव द पांडा।
Therefore, in which way will the jiva find happiness and peace? How can he establish his relationship with the Supreme Lord? That can be achieved by this Mathura Parikram. We are not these material bodies, which is a bag containing ingredients like stool, pus, urine, etc. We are the living entity, and Bhagavan, out of his mercy, has given this special consciousness in a human form of life. He has given Chaitanya. In this human form of life only, we get the chance to perform Satasanga. We get the chance to perform Bhajan. And only in the human form of life, we get the chance for Guru Pada Shraya.
That is why it has been told, Turdam Jate Tana Patet Anumitpuyava.
That's why it has been said, before this, even though this human body is temporary, before it falls down, before death, one must take advantage and achieve perfection in this human form of life, which is very rarely achieved. In this human form of life only, one can take shelter at the feet of a bona fide guru. In the other 8 million species of life, that facility is not available. Therefore, for 1 month, we have a chance to perform this parikram. Brajamando, Aturamando is very, very powerful, and the pastimes performed here are most confidential. In Parikram, we get the chance to perform all types of bhakti, beginning with Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedanam. Especially Shravanam, Kirtanam and Smaranam are prominent. Also, we get the chance to perform the 5 most powerful limbs of bhakti, Sarusanga, Nam Kirtan, Bhagavat Shravana, Mathura Vas, Chishadayam, Murtya Sevana. Therefore, we get a chance to perform all of these in this month of Kartik. Therefore, this month is called Puja Prat or Kartik Prat or Damodar month. This is the month belonging to Srimati Radhika. Therefore, for her happiness, to please her, we are performing in a regulated way prayers and kirtan as an offering to her lotus feet. And for her happiness, we are traveling to these different places like Radhakund, Govardhan and Brajamando. Therefore, for 1 month, those who have not taken shelter of the Guru must remain very strictly under his guidance and take complete shelter, especially in this month of Kartik. Therefore, for this reason, we have called everyone from their villages and from their homes to perform this Brajamandal Parikram. There are seven main worshipful cities in India: Kanchi, Kasi, Dwarka, Ayodhya, seven are there. Amongst all of these, Mathura is prominent. After thousands of years of performing austerities in these other main cities, one can achieve that same result and a superior result simply by remembering Mathura. Therefore, one can stay here even one night without offense. Definitely he can get Hari Bhakti. One thing, Guru said, only nice kirtan and Casio harmonium, this will not help us very much. We have to do bhajan in a mood like Sukadeva Goswami with pure devotion. Then this can be called Sankirtan.
ओम ज्ञान पुराम भस्त ज्ञानांजन सलाकेया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाम भुरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भक्ति युग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीवन कुरुतमैव मतिर्दयाङ्गभरात् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्रिला प्रभुष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धों के गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत गुरु साक्षात तद्वत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद वर्मा परिपराजि का आचार्य पितृदर्शी स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को चरण स्वरूप में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान कर उपस्थित पितृदेवीपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण राजस्था जी को प्रणाम। आज एक विशेष स्थिति है, आज का दिन को उपलक्ष्य करके हमारे संप्रदाय में तीन तीन वैष्णवों का आज तिरुभाव महामहोत्सव है, उसमें श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज तिरुभाव महामहोत्सव है। कल श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जद्यपि हुए राधा रानी नित्य परिकर है रति मंजरी, लेकिन उनका जीवन ऐसे कि दिव्य जीवन है, हुए हम लोगों को एक साधारण साधक किस रूप में साधन भजन करे, हुए एक साधारण अतिथि हुए नित्य परिकर होते हुए भी एक साधारण साधक रूप में उतर करके हम लोगों को किस तरीका से साधन भजन करनी चाहिए, उन्होंने ये सब चीज को सिखा दिया है। और उन्होंने यह सिखा दिया, अगर सचमुच से किसको भगवत भक्ति में रुचि हो, भगवत भक्ति में रुचि होने पर कैसे स्वाभाविक रूप में जीवन में विषय का प्रति उसको वैराग्य आता है, ये भी उनको जीवन में एक बहुत बहुत बड़ी शिक्षा है। हमारे गीत गोविंद में कभी जयदेव एक बहुत बढ़िया श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक में कहते हैं, कहते साध्वी माध्व की चिंता न भवती सर तरे पर कसासी Drakse draksan tipes soma mritam mritmasi kiram niram rasaste makranda krantha kantha dhara natulam gaccha jaccha tibhava javad sringar subhamiva jaydev vaidhat vaidhati vacha. Sri Gita Govinda mein kabhi jaydev kehte hain agar sachmuch se bhagavat bhakti mein इसको अगर रुचि हो जाए, अगर सचमुच से राधा कृष्ण का प्रेम रस को कोई आस्पादन करे तो कहते उसको जीवन में क्या देखने को मिलता है? कहते हैं साध्वी माध्वी का चिंता न भवती। माध्वी मतलब होता है मधु सहेद। कहते सहेद में जो रस है उसमें जो मिष्टता है, कहते साध्वी माध्वी का चिंता न भवती। कहते कृष्ण भक्ति रस को सामने मधु का जो मिष्टता वो भी उसको सामने फीकी पड़ जाते हैं। साध्वी माधवी की चिंता न भवती। कहते सरकरे के जो सरकरा को बहुत अच्छा मीठा करते हैं। कहते हे सरकरे तू कर्कशासी, तू तो कर्कश हो गया हो, तुम तो एकदम कड़वा बन गया हो कृष्ण भक्ति को सामने। और कहते द्राक्ष द्राक्षर की, कहते हे द्राक्षारस, कहते द्राक्षारस एक तरह का अंगूर रस से एक तरह का वो रस बनता है जिस रस को जगत में बहुत अच्छा रस कहते हैं। कहते द्राक्षा द्राक्षंती, कहते हे द्राक्षारस तेरे को अभी कौन देखेगा, अभी तेरे को जगत में कोई नहीं देखेगा। द्राक्षा द्राक्षंती के त्वा मृत मृतमसी, जगत को अमृत को बहुत बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं। जगत में सब लोग कहते अमृत जैसे चीज है, स्वर्ग में जाओगे तो अमृत पियोगे, लेकिन कहते हैं अमृत तो मृतमसी, कहते हैं अमृत तू तो मर गया, तू तेरे को कौन पूछने वाले जगत में, तेरे को अभी कोई पूछने वाले नहीं। कहते क्रांता क्रांता धर, इसी जगत में सर्वश्रेष्ठ सुख स्त्री संग को मानते हैं और स्त्री का आधा अमृत को पान को ही जगत में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कहते क्रांता क्रांता धर, कहते हे कांत का जो अधरा मृत, तू तो कृष्ण भक्ति रस को सामने अगर किसको राधा कृष्ण रस प्रेमामृत अगर आस्वादन विषय हो तुमको जगत में कौन पूछेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे उन्होंने शादी कर दिया तो स्तर पर देखे ही नहीं, इसलिए क्रांता क्रांत धर नातुला भाव गच्छति, इसलिए के जावत श्रृंगार सार शुभम एव जय देव स वैदग्ध वाचा, इसलिए कहते जय देव का जो सुंदर सुंदर पद्यावली है, जो रसात्मक का पद्यावली है, अगर जीवन में कोई एक बूंद अगर उसका आस्वादन का विषय हो जगत में सारे रस उसको सामने फीकी पड़ जाती है, जो कवि जयदेव कहते हैं। इसलिए ये जितने सारे लक्षण हैं, कहते हमारे ये रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में ये सब एक एक करके सब चीज दिखता है। कहीं सचमुच से इतने सारे वैभव के, हाँ वैभव रहते हुए भी कैसे उन्होंने सारे वैभव को तुच्छ करके कैसे भगवत भजन किया है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनका जो साधारण जीवन है, सर्वप्रथम वो शिक्षा देते हैं भक्ति स्तु भगवत भक्त सांगन परिजाय। अगर जीव को कभी भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती जितने भी नित्य परिकर है, लेकिन उनके जीवन में सर्वप्रथम हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य का उनको संग प्राप्त होता है। साधारण रूप में दिखाते हैं यद्यपि उनको तुलना करने पर रघुनाथ दास गोस्वामी को उनका कोई स्थिति तो अद्भुत स्थिति है, लेकिन तब भी साधारण साधक के लिए दिखाते हैं कि तो उनका संग से मानो उनको भगवत चरण में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में उनका अनुराग होता है। अभी भगवत चरण में अनुराग होने पर स्वतः भक्ति परेशान भव विरक्ति, भगवत भक्ति में परेश का अनुमति होने पर कहते जो विरक्ति है वो तृतीय स्टेज में भक्ति परेशान भव और विरक्ति। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कहते हम कोई भजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, कहते लेकिन विषय का प्रति संसार का प्रति तुम्हारा वैराग्य नहीं हो रहा है, क्या समझनी चाहिए दाल में कुछ काला है, भजन हमारे सही सही नहीं हो रहे हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में हम देखते हैं उनको भगवत भजन में श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरिचरण कमल में जब उनको प्रेम प्रकट होता है, उनको संसार का सारे वैभव उनके सामने फीकी पड़ गया, सबके सब तुच्छ मानते हैं और घर बार छोड़ छाड़ करके महाप्रभु के चरण में वो बारंबार आते हैं और उनको पकड़ पकड़ करके और बारंबार उनको पिताजी ले जाते हैं। तो महाप्रभु उनको कुछ शिक्षा देते हैं, देखो स्थिर है या भरे जाओ ना हो बातुर क्रम में क्रम पाएगी भवर से भूल अंतर निष्ठा कर लो सब अच्छे व्यवहार अच्छी रात्रि कृष्ण समाज कर रघुनाथ। कभी कभी हम लोग पागलपन करते हैं, हाँ जैसे पता है गुस्सा भाई, कभी कभी हमारे अंदर में कभी साधन के जीवन में साधन भजन में इतने उत्साह दिखता है, पहले साधन भजन में मान समझो भगवान को प्राप्त कर लेंगे लेकिन वो उत्साह नहीं कभी कभी धर्म करवा दूसरे संग्रह नियम तम करते करते कहाँ से कहाँ उतर आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या देखो रघुनाथ स्थिर है या घर जा महाबातुल घर में जा करके युक्त वैराग्य पूर्वक फलगु वैराग्य नहीं युक्त वैराग्य पूर्वक भगवत भजन करो। भगवत भजन जब सही सही करेंगे जब भगवत चरण में हमारे अनुराग धीरे धीरे बढ़ेगा हाँ उसी समय कैसे ये संसार तुम्हारा छूटेगा कैसे तुम भगवत चरण में आओगे छल कृष्ण तुम्हारे जोगा उसी समय किस रूप में भगवत भजन करने के लिए आओगे तब उसको स्वयं भगवान हृदय से अंतर जात रूप में तुमको वो सब कुछ प्रदान करेंगे। इसलिए घर में जाओ अभी कहते लोकवाच्य व्यवहार अंतर निष्ठा कर लोकवाच्य व्यवहार बाच्य लोक व्यवहार लेकिन अंतर में निष्ठा को रखो। लेकिन जो लौकी की जो रीति है हाँ संसार में कैसे रहनी चाहिए को करनी चाहिए लेकिन केवल ऊपर से दिखाने के लिए केवल ऊपर प्रेम करो। जैसे श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी को वो जो श्लोक लिखते हैं पालागिनी गृह कर्मसु इसलिए ऊपर से केवल करो लेकिन हृदय से संपूर्ण रूप में तुम्हारा प्रेम प्यार को गुरु कृष्ण और महाप्रभु का चरण में रखो। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी जाकर के अभी महाप्रभु का उपदेश का अनुरूप कैसे घर में कैसे क्रिया को करते हैं फिर उनको कोशिश करते हैं कि एक काम करो जगत में सबसे जगत में बंधन का कारण होता है स्त्री है कहते उसको सुंदरी एक स्त्री को साथ में शादी करा दो कहते स्त्री अवसरी समो मानो कि अवसरी जैसे एक स्त्री को साथ में उसको शादी करा दिया। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ कहते कृष्ण रस भक्ति अगर किसको आस्वादन का विषय हो लेकिन वो स्त्री को तरफ में देखते हैं उसके मन में कोई मतलब नहीं है हाँ फिर कहते उसको हाथ प्यार बांध करके रखो ये बारंबार भाग जाता है। कहते जगत में विशेषकर दो ही वस्तु बहुत ही बंधन का कारण होता है एक मतलब पैसा है और दूसरा स्त्री है। कहते इसको पास में इंद्र के बराबर ऐश्वर्य है और स्त्री कहते स्त्री अवसर्य से स्त्री है ये चीज सबसे बड़ा बंधन है। रघुनाथ दास गोस्वामी का पिता कहते तुम पागली जिसको ये सबसे बड़ा जो बड़ा बंधन है अगर ये उसको बांध नहीं पाया तो कहते चैतन्य बांधते तो सारे एरा के पारे अगर महाप्रभु का प्रेम में कोई एक बार डुबकी लगाते हैं तो उसको कौन बांध कर रख सकता है। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी बाद में फिर बहाना बना करके उन्होंने एक महीना रास्ता को उन्होंने केवल 12 दिनों में उसको अतिक्रम करते हैं और दिनों में केवल 12 दिनों में केवल 3 दिन किसी तरह से कुछ खा करके जगन्नाथपुरी में पहुंचते हैं। तो जगन्नाथपुरी में पहुंचे महापुरुष का रघुनाथ भगवान के तुम्हारे ऊपर में विशेष कृपा है क्योंकि ये जो विषय विष्टा है ये विषय इंद्र का विष्टा है भगवान का कृपा नहीं होने पर ये विषय विष्टा से कोई नहीं निकल सकते हैं। भगवान विशेष तरह पर कृपा है क्योंकि तुम संसार छोड़ छाड़ करके तुम भजन करने के लिए आ गए हो तब उनको स्वरूप दामोदर को हाथ में दे देते हैं इसलिए उनका एक नाम है स्वरूप रघु। हाँ स्वरूप दामोदर कौन है कहते ललिता है और ये रति मंजरी है अभी उनको हाँ साथ उनको उपदेश अनुरूप अभी ये साधन भजन करते हैं। एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को कहते प्रभु मैं चाहता हूं आपका मुखार बिंद से ही डायरेक्ट कुछ उपदेश श्रवण करना चाहता हूं इसलिए आपका मुखार बिंद से ही कुछ उपदेश सुनना चाहता हूं। तो महाप्रभु ने अपना मुखार बिंद से उन्होंने चार लाइन उन्होंने उनको उपदेश दिया है। तो चार लाइन नहीं मानो, कितने सारे शास्त्र है, सारे शास्त्र का निचोड़ उन्होंने केवल चार लाइन में उन्होंने बता दिया है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं मर्कट बैरा के ना कर लोग दिखाया जथा जथा जो विषय भुज अनाश कर ग्राम्य कथा ना करे ग्राम्य कथा ना सुनवे ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करी। रघुनाथ ग्राम्य कथा ना करे ग्राम्य कथा ना सुनवे, कहते जो ग्राम्य कथा बोलना नहीं और ग्राम्य कथा सुनना नहीं, क्योंकि ये सबसे हमारा बड़ा व्याधि है। अगर हमको कोई ग्राम्य कथा सुनने को मिले हमारा काम खराब हो जाता है। अगर हरिचर्चा कहीं हो, भगवत कथा आपको फिर हो, वर्तमान ठाकुर कहते हैं झूले झूले तलाश वाले हमको नींद आ जाती, लेकिन अगर कोई इधर उधर का चर्चा हो, ग्राम्य चर्चा हो, भले ही हम यहाँ पर है लेकिन वहां पर कोई बैठ करके कोई ग्राम्य चर्चा करते हैं, लेकिन वो ऐसे है दूर में रहने पर भी पता चल जाएगा वहां पर कुछ हो रहा है। हम क्या करेंगे अगर यह हरी कथा होता है छोड़ करके जहाँ ग्राम्य कथा होता है वहीं चले जाएंगे, लेकिन जहाँ हरी कथा होता है वहां जाएंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ा बीमारी है। हाँ, इसलिए कहते ग्राम्य कथा ना बोली वे ग्राम्य कथा ना सुनी वे, कहते सुनना भी नहीं और बोलना भी नहीं, क्योंकि हम जो सुनते हैं और जो बोलते हैं उसी में ही हमारा आवेश होता है। अगर हम इधर उधर बोलेंगे तो हमारा आवेश ही गंदी तरफ में जाएगा। इसलिए अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से विवर्जनम, इसलिए हमको जीवन में भगवत भक्ति का जो अनुकूल है कहते संकल्प मतलब प्रतिज्ञा करना, आज से हम भगवत भजन का जो अनुकूल वस्तु है जीवन में उसको ही ग्रहण करेंगे, जीवन में जो प्रतिकूल वस्तु है हम जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। और मर्कट बैरा के नात्र लोग देखा या कहते लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत बड़े साधु है, इसको दिखाने के लिए हमको बंदर जैसे बैठा के नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमको जथा योग्य हो नहीं तथा हो, हमको जितने शरीर के लिए जरूरत है उतना ही ग्रहण करनी चाहिए। हमको ज्यादा ग्रहण करेंगे भोगी बन जाएंगे, कम बन के करेंगे तो फिर परमार्थ से चुत हो जाएंगे। और जो संसार की जो जितने भी जगत में जितने सारे विषय वस्तु है सब कृष्ण संबंध जान करके सबसे सब कृष्ण भजन के कृष्ण सेवा के अनुकूल रूप में जान करके हर वस्तुओं को हमें भगवत सेवा में लगानी चाहिए। और आप ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करिए, मन मन में राधा कृष्ण की सेवा को मन मन में करना। महाप्रभु के उपदेश रघुनाथ दास गोस्वामी को देते हैं। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी पहले तो उनको पिता का दिया हुआ कुछ वस्तुओं को ले करके महाप्रभु निमंत्रण करते थे, लेकिन देखा महाप्रभु उसमें ग्रहण तो करते हैं लेकिन महाप्रभु संतुष्ट नहीं। कहते क्यों? कहते जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके भजन करने आया है, कहते कम से कम उनके अंदर में यह विश्वास रहना चाहिए। हाँ, रक्षसती विश्वास गुप्तुर से वर्णन करना, भगवान का हम भजन कर रहे हैं, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, पहले कुछ बैंक बैलेंस कर देंगे। कहता अभी तो गुरुदेव है, अगर गुरुदेव नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमारा भविष्य तक क्या होगा, इसे अभी से तो कुछ जमा कर रखनी चाहिए ना, नहीं तो गुरुदेव है खिलाड़ी खिलाड़ी बाद में क्या होगा मटका, इसका मतलब क्या होता है। खैर मतलब है अभी हमारा भजन सही नहीं, हम भगवान के हृदय से पुकारते नहीं, भजन का अनुभूति नहीं, इसलिए भजन में कभी हमारा अंदर में, लेकिन जब सचमुच से हम भगवान भजन करेंगे कभी जो रक्षित विश्वास गोत्रित वर्णन तथा ये भगवान स्वयं प्रदान करेंगे, भले ही हम जितने विषय वैभव को संग्रह कर ले लेकिन अगर भजन का शक्ति नहीं रहेगा तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर भजन शक्ति रहे सारा दुनिया हमारा चरण में आकर लौटेगा। हाँ, सारा विषय वैभव आप देखो महाराज को देखिए, महाराज कैसे अकेले सारा विश्व ब्रह्मांड में भजन का प्रभाव से कैसे भजन, इसलिए हम लोगों को गुरु वैष्णव का आदर्श ग्रहण करनी चाहिए। हाँ, इसलिए कभी कभी हम विशेष संग्रह करने के लिए चाहते हैं, लेकिन सचमुच से गुरु वैष्णव से गुरुदेव जो वस्तु देना चाहते हैं वो क्या देना चाहते हैं, गुरु प्रेम देना चाहते हैं, भगवत भजन का दिव्यता देना चाहते हैं, भगवत अनुभूति देना चाहते हैं। अगर सचमुच से गुरु जी से अगर हम वह वस्तु को प्राप्त कर सके फिर तो समझो कोई चिंता नहीं। अगर गुरु जी से अगर वह वस्तु ग्रहण नहीं कर सके, केवल ऊपर का विषय वैभव को लेकर के हम मारपीट दंगा और उसमें प्रतिष्ठा पाने के लिए करें, जीवन में कुछ भी होने वाले नहीं। अगर भजन नहीं करोगे तो जगत में कोई पूछने वाले नहीं। अगर हम भजन करेंगे तो भगवान भक्ति करेंगे तो भक्ति स्थिरता भगवान यदि मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। अगर हृदय में भगवत भक्ति अगर प्रकट हो जाए विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा शरण में अपने आप लौटेंगे। लेकिन तत्व तो हमें भगवत भजन में हमारा विश्वास होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु मानव यह शिक्षा देने के लिए एक शुद्ध वैराग्य के लिए जो आदर्श रूप में होनी चाहिए, हम भजन कर रहे हैं पिताजी हमको भेज रहे हैं पैसा, पिताजी तो भगवान भजन पर विश्वास किया है। इसलिए महाप्रभु का भावना छोड़कर छोड़ दिया। फिर उन्होंने बाजार में आनंद बाजार में फिर वहां पर जाकर उन्होंने भिक्षा किया, फिर बाहर भी खड़े होकर भिक्षा किया, महाप्रभु उसको भी रिजेक्ट कर दिया। कहते तो बेचकर भिक्षा है, कोई आएगा तब तुमको देकर जाएगा और तुम खाओगे फिर भजन करोगे, फिर तुम्हारा भजन में तुम्हारा विश्वास कहाँ, भगवान की तुम्हारा विश्वास कहाँ है। इसलिए यदि महाप्रभु ये चीज को एवं भाष्य करके यह चीज को भी महाप्रभु ने आदर नहीं किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी इसको भी समझ करके यह चीज भी रघुनाथ दास गोस्वामी त्याग देते हैं। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जा करके जो चीज को गैया भी नहीं खाते हैं हाँ उसको भी धोधा करके शिखर से नमक दे करके उसको भी रघुनाथ दास गोस्वामी उससे भी ग्रहण करते हैं। फिर अपना भजन आदर्शों को दर्शन कराते हैं। फिर उन्होंने जब महाप्रभु धीरे धीरे जब अंतर ज्ञान होते इसलिए उनका जो कथित साधारण साधन उनका है एक साधन, लेकिन उसको सिद्ध उनका तो कैसे राधा कुंड में आकर के कैसे दीप आरती और उत्कंठ और साथ में उनका जो भजन आदर्श जो राधा कुंड में और वहां पर जो तबावली रूप जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है और उन्होंने ललित माधव नाटकों को करते हुए कृष्ण विरह में कैसे तड़फड़ाते हैं और रूप गोस्वामी कैसे दान के लिए कमल ग्रंथ दे करके उनको सांत्वना करते हैं और जो विलाप पुष्पांजलि जो ग्रंथ को कैसे हुए राधा रानी को चरण में एक एक श्लोक को एक पुष्प रूप में कैसे अर्पण करते हुए भजन की जो दिव्य उत्कंठा और सिद्ध देह की जो साधन की वहाँ दिखाते हैं उन्होंने एक साधक जगत को एक बहुत बड़ी दिव्य वस्तु कर गए। हम बोलते हैं हमारे गुरु रूपानुगर है बोलते रूपान को भर्ज है, लेकिन रूपान को भर्ज के भर्ज कौन है रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जो अनर्पित चरित्र प्रेम देने के लिए आए थे। अगर हमको अनर्पित चरित्र प्रेम क्या है अगर यह चीज को समझना तो रघुनाथ दास गोस्वामी का बिलासपुर का पुष्पांजलि और इस कवावली में जितने सारे अष्टक यह चीज को हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हम हमारे गौड़ीय वैष्णव में क्यों आए महाप्रभु जगत में क्या देना चाहते हैं तो यह चीज को हम समझ पाएंगे। आज उनका त्योहार है कोई लोगों पर भी कृपा करे उनका भी कृपा बहुत जरूरी महाराज जी अगर हमारा हम लोगों पर कृपा करे इनका कृपा वहाँ तक पहुँचेगा। अगर फिर अगर कृपा हो फिर कभी ना कभी हम लोग वह रस की एक बूंद आस्वादन करने का हमारे सौभाग्य प्राप्त होगा। आमीन बोल करके कुछ पानी
आ गई आपको बहुत मिस किया
तो कोई बुलाने नहीं आया नहीं तो जाने से अपमान होता आप समझिए। आपने कहा कि दूसरे कोई आकर के कहता जरूर चाहता
मैं भाई कह रहे थे मैं शिष्य लोग चाहते थे लेकिन मुझे भी सीख नहीं चाहा बिल्कुल आपको इसलिए वो लोग नहीं करते सर कुछ।
हम लोगों ने वेट किया 12:30 बजे तक।
कौन वेट किया
महाराज जी के जो शिष्य थे
कोई आकर के कहता
हम लोगों ने खुद उनको समाधि दिया फिर आपकी आज्ञा से कैसे बताया आपने कि रूप मंदिर पर
हमको यहाँ आकर के कोई भी कहता तो मैं जाता मैं तैयार बैठा था। हमारे ये मित्र थे बंधु थे मैंने उनके संबंध में बताया सब कुछ पुष्पांजलि यही सब किंतु मैं अपमान का दर्द स्कूल वाले हमको कुछ नहीं पूछा, आपके गुरु भाइयों ने भी आकर के हमसे मिला, इसलिए मैं ज्ञान भेज करते हैं। मैं जाऊँगा आऊँगा बैठ।
हाँ, अबाउट रघुनाथ दास गोस्वामी हिज लाइफ एंड टीचिंग इन ब्रीफ।
Today is a very auspicious Tirubhav Mahamahotsav teaching of Sri three very great acharyas in our line of Srila Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami Maharaj, Srila Raghunath Bhakta Goswami, and Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. All three are very, very prominent Rupa Nuga Vaishnavas, followers of Srila Rupa Goswami. Amongst them, Srila Raghunath Das Goswami Pad, in our disciplic succession, he is known as the Prayojan Tattva Acharya, because he has shown the way how to approach, what is the process to approach the supreme destination, the prayojan, the ultimate attainment for the living entity which Sri Chaitanya Mahaprabhu has brought within this world. So as Srimad Rasananda Prabhu very beautifully explained the life of Srila Raghunath Das Goswami, it is an example for all the Vaishnavas. Although Raghunath Das Goswami, he is an eternal associate, Nitya Parikar, of Sri Gauranga Mahaprabhu and Sri Sri Radha and Krishna, as Sri Rati, Rati Manjari. She descended into this world as Sri Raghunath Das Goswami Pad. But the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they are all Nitya Siddha, but they come into this world and they show us by their life example how to be sadhakas, how to follow this path of pure devotion and how to attain the ultimate attainment of Krishna praying which Chaitanya Mahaprabhu has brought. So Srila Raghunath Das Goswami's entire life is an example for all sadhakas how to follow, how to progress step by step in a very healthy way, so that one does not haphazardly try to jump forward and suddenly attain the ultimate goal without being qualified. So Srila Raghunath Das Goswami, he was born into a very exalted family, which was also very, very wealthy, and they were living in the Gauramandala Bhumi, in the land of Chaitanya Mahaprabhu, West Bengal. So Raghunath Das Goswami's parents were vastly wealthy landowners, and Raghunath Das Goswami from early childhood was like a very wealthy prince. And he was given all opulence in his childhood and youth. But what is very important in his life is that in his childhood he also had very exalted sadhu sangha. Srila Namacharya Haridas Thakur, he used to come there to visit the house of Govardhan Majumdar, the father of Srila Raghunath Das Goswami. Haridas Thakur used to sit him on his knee as a little baby, as a little child, and chant Harinam to him. Sri Advaita Charja used to also visit. And in this way, Yadunandana Charja also, very exalted personality, was the family guru of Srila Raghunath Das Goswami. So all throughout his childhood, he had very high sadhu sangha. This is the process. Without sadhu sangha, it is not possible for a living entity to actually advance to the ultimate goal of life. But by attainment of sadhu sangha, bhaktistu bhagavad bhakta sangena parijayate, by attainment of proper exalted sadhu sangha, by attainment of Vaishnavas who are rasik and who are tattvajna, then one can have an opportunity to attain pure Krishna bhakti in this life. So Srila Raghunath Das Goswami, with the blessings of these great acharyas, had this seed implanted within his heart. And when he initially had the opportunity to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu, when Chaitanya Mahaprabhu came to Bengal, Raghunath Das Goswami became completely mad. He wanted to immediately leave home. He wanted to go with Chaitanya Mahaprabhu. But he was bound by the ties of family and society and wealth. And they had to try to keep him there in his home. Raghunath Das Goswami, even he tried to escape from his home so many times. But they were binding him with chains and ropes. But finally, after so much attempts, one day Sri Nityananda Prabhu, he came to a nearby village, Halihati. And when Nityananda Prabhu came there, Srila Raghunath Das Goswami was able to get permission to go and have his darshan. And when Srila Raghunath Das Goswami came near to the place where Nityananda Prabhu was sitting, next to the Ganga, underneath a very beautiful banyan tree with all of his associates surrounding him, then from a distance Raghunath Das Goswami paid his obeisances, and Nityananda Prabhu, he saw him from a distance and he called to him and he said, "You thief, come here right now, you thief." And Raghunath Das Goswami very shyly was standing there, and he came toward Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu kicked him in his chest with his lotus feet. And then Nityananda Prabhu, he explained to him, "Why are you trying to go to Gauranga Mahaprabhu without without going through me? Because Chaitanya Mahaprabhu is my property. If you want, you cannot be a thief, and you cannot approach him without my blessings." So then he told Raghunath Das Goswami that you must have a penalty. What is the penalty? Now you will have to perform a very great festival, and you will have to feed all the Vaishnavas. So that famous festival was called Chiradahi, where there was flat rice and yogurt and so many beautiful sweets and fruits. And Raghunath Das Goswami arranged for this huge festival to feed thousands and thousands and thousands of Vaishnavas. And at that time, he received the blessings of Nityananda Prabhu. Then he went back to his home. And when he went back to his home at that time, Srila Raghunath Das Goswami, internally, he was completely attached to Krishna. But externally, he took care of all of the details of the social duties and family obligations. And for 1 year, like this, he very expertly acted like a perfect materialistic person, but internally, he was completely cultivating his attachment and his separation mood from Chaitanya Mahaprabhu. So, although his family, they were constantly trying to keep him from escaping, even by chains, but now they became a little bit confident that he would not run away. So one evening they allowed him to go with his Gurudev, Yadunandana Acharya. And when he went with his Gurudev, at that time he requested his Gurudev that now I want to leave, now I want to go to Mahaprabhu. And Yadunandana Acharya gave his blessings, and Raghunath Das Goswami, without any guards, he began to immediately run through the forests, through the pathways, not on the main roads, and he began to go toward Jagannath Puri. And at that time, walking by foot to Jagannath Puri, oh, it would take at least 1 month. But Srila Raghunath Das Goswami was running and constantly mad in Krishna prem, in the mood of separation from Mahaprabhu. And in 9 days, just eating a few chickpeas along the way, getting some milk from any cows, he finally reached Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. And at that time, when he reached Mahaprabhu, and he paid his Dandavat pranams, Mahaprabhu told him, oh, you have received Krishna's unlimited mercy, because he has delivered you from this pit of stool, like you have fallen into the pit of stool of this materialistic world of family and society. And Krishna has so mercifully delivered you from this. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu, he delivered Srila Raghunath Das Goswami into the hands of Srila Swarup Damodar Goswami. And in Krishna Lila, Swarup Damodar Goswami is none other than Lalita Devi, one of the prominent Ashtasakis. And Srila Raghunath Das Goswami is Rati Manjari, serving under in that camp. So Srila Swarup Damodar Goswami took Raghunath Das Goswami as his very own. And for all the years that Raghunath Das Goswami lived in Jagannath Puri, oh, Swarup Damodar Goswami gave him all instructions and all teachings. So Raghunath Das Goswami, he became known as Swarupair Raghu. That means the Raghu of Swarup. And at one time, Raghunath Das Goswami, he desired that he would receive some teachings from Gauranga Mahaprabhu's lotus mouth directly. And he begged for Chaitanya Mahaprabhu to give him some instruction. So at that time, Chaitanya Mahaprabhu agreed, and in very essential verses, Chaitanya Mahaprabhu taught him like four different verses. Gramya pata na shunive, gramya bharata na kahive, balo na kaive yaar, balo na parive, amani manada vaya, krishna naam saga labo, rajay radha krishna, manase karibo. So he told him, don't engage yourself in hearing Gramya Kata. Gramya Kata means ordinary materialistic topics that are dealing with this mundane world. It is very contaminating to associate with that element, because if you want to cultivate pure devotion, pure bhakti, this will be like poison, always hearing Gramya Kata, ordinary topics and mundane different types of gossip and so forth. And also do not engage yourself in speaking any of these topics. And always, you should be very, very simple in your life. Don't dress yourself luxuriantly. Don't eat luxurious foodstuffs. Always be very, very humble, constantly taking the name of Krishna, Krishna Nam, Sada Labo, and in your core of your heart, living in Braja, always serve Radha and Krishna. So in very essence, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave Raghunath Das Goswami these instructions. So Raghunath Das Goswami, he exhibited, while he was living in Jagannath Puri, very high level
of renunciation, step by step by step. He was renouncing opulent eating of foodstuffs. And sometimes he was only begging, sometimes he was taking from the free kitchens, sometimes he was standing in front of the Singhagwara gate and waiting for anyone to give him some alms. And gradually, gradually, he reduced his eating and his attachment to opulent foodstuffs to the point where one day he was taking the rice, which was had been like 3 days old. It was discarded into a big pile outside of the Jagannath temple, and already it was rotting. But he took that rice and he washed it with water, and there's some little inner kernel of that rice. He now began to eat that. And that was what he was subsisting on, the Jagannath Mahaprasad, of only this inner kernel of rice. So Chaitanya Mahaprabhu, one day, he found out that Raghunath Das Goswami was doing this, and he personally came there to that place. When he came there, he said, "Oh Raghunath, I have heard that you are observing very great festival. You are eating very wonderful opulent foodstuffs of Jagannath Das, and you are not inviting me?" And Raghunath Das Goswami was feeling embarrassed, and Chaitanya Mahaprabhu snatched from his hand this rice, and he began to eat this curls of rice, and became overwhelmed in transcendental ecstasy. So in this way, Raghunath Das Goswami exhibited such severe renunciation. And for this whole time period that Chaitanya Mahaprabhu was living in Jagannath Puri, Raghunath Das Goswami was there. He was keeping notes of all the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, constantly keeping a diary. And that diary actually was used by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad to write Sri Chaitanya Charitamrita, all the later pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, which is based upon this diary of Srila Raghunath Das Goswami. So after Chaitanya Mahaprabhu performed his disappearance pastimes from this world, then Srila Raghunath Das Goswami was in utter anguish of separation. He could no longer maintain his life. Swarup Damodar Goswami had left. Sri Gadadhar Pandit Prabhu had left this world. So now Raghunath Das Goswami, he could not find any possibility to go on living, and he decided that he would go to Braja, and there he would end his life by jumping from Govardhan and ending his life. But when Raghunath Das Goswami came to Vrindavan, there he met Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami. And there he saw within them the complete living manifestation of Chaitanya Mahaprabhu. So now Raghunath Das Goswami, he became the disciple of Rupa and Sanatana. And Raghunath Das Goswami was treated like their very dear intimate brother, and they gave him their association and blessings. And Raghunath Das Goswami began to live on the banks of Radhakunda. And there Srila Raghunath Das Goswami exhibited the highest manifestation of transcendental ecstasies in the separation mood from Srimati Radhika. And he exhibited what is the ultimate attainment of Radha Dasya. He wrote the great literature Vilapa Kushamanjali, in the end offering the prayers from his heart in utter separation mood from Srimati Radhika. And there he expressed Asha Varaya Ramrita Sindhu Mayai Kutam Chit Kalo Mayati Kamita Kina Sampratam Hi. He told that, "Oh my dear Srimati Radhika, if you do not be merciful to me, at this very moment, I don't know how I will be able to go on living. And even this Braja, which is as dear to me as my life itself, I cannot stand to live here anymore. And even Krishna himself, I don't want if I cannot have your divine service of your lotus feet." So in this way, he prayed, tavai vasmi na jivami tvayavina iti vigyaya radhe tvam nayamam charanati ke. Srila Raghunath Das Goswami Pada ki jai.
Sankhepe. Bolo tale. Sankhepe. Do chai gom. Bangla mein.
गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकायै तदारय कृष्णाय कृष्णवस्त्राय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम अश्वतीय परवारकृतव गुरुपादपद्मे असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करी तदनंतर उपस्थित पूजनीय संन्यासीवृंद समस्त वैष्णवज सज्जन माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। এখনই আপনারা শ্রবণ করলেন শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী জীবন চরিত্র এবং তাহার ভজন আদর্শ এবং কৃপা করুণা এবং আজকে আরো বিশেষ তিথি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদের তিরুভাব তিনি শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতের বর্ণনায় বললেন কি শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যা রাস চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ যিনি ধামতপুর নিবাসী নবদ্বীপের সন্নিকটে কাটোয়ার সন্নিকটে ধামতপুর গ্রামেতে তাহার আবির্ভাব হয় বাড়িতে এক সময় মীরকেতন রামদাস শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগৃহীত পাত্র তো শ্রী মীরকেতন রামদাস তিনি নিত্যা ঝামতপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গৃহেতে আসেন সেইখানে ভক্তগণ সঙ্গে নিয়ে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কীর্তন করেন সেই শুনে তাহার ভাই কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতা অত্যন্ত বিরোধ করেন এবং নিন্দা তিরস্কার করেন সেই সমস্ত দেখেই তাহারা কীর্তন বন্ধ করেই সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেলেন বলে নিত্যানন্দ প্রভুর অপমান তিরস্কার কোনোদিন সহ্য করা যাবে না এমন সময়ে কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি দুঃখী হয়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসলেন রাত্রিকালে এক বৃক্ষ তলে শয়ন করেছেন এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভু তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন বললেন কি কৃষ্ণদাস তুমি আমার জন্যই আজকে গৃহ পরিত্যাগ করেছ অতএব আমি আজ্ঞা দিচ্ছি তুমি বৃন্দাবনে যাও বৃন্দাবনে গেলে তুমি সব কিছুই পাবে এইভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর করুণায় শ্রী কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বৃন্দাবনে আছেন তিনি লিখলেন কি যে নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় পাইনু বৃন্দাবন দর্শন যাহার কৃপায় পাইনু গোবিন্দ গোপীনাথ মদন মোহন পুরুষের পিঠ হইতে মহিষে লঘিষ্ঠ মোর নাম যেই লয় তার এই প্রকারে নিত্যানন্দ প্রভু করুণার কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন এবং দিনহীন ভাবে ভক্তির পরাকাষ্ঠায় দিনহীন ভাব সেই প্রবল দৈন্য সহকারে তিনি নিজের ভাবে অভিব্যক্তি করেছেন
আপনারা রঘুনাথ দাস গোস্বামী আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কিছু জীবন চরিত্র এবং শিক্ষা এবং ভজন প্রণালী শ্রবণ করলেন আর আজই কে দিন মে রঘুনাথ ভট্ট জি কা তিরোভাব হয় বে রূপ গোস্বামী কে সভা মে ভাগবত কে বক্তা থে বড়ে স্বর সে মধুর স্বর সে ভাগবত কা উচ্চারণ করতে আর উসকি এসি ব্যাখ্যা করতে বিরহজনক মিলনজনক যে অর তো ক্যা রূপ গোস্বামী ভি মূর্ছিত হো জাতে আর লোক রোতে আঁসু আতে নাক সে লালা গিরতা আর রূপ গোস্বামী কেসে চুপচাপ বেঠে লোক সমজতে কি বেঠে হ্যাঁ দেখো জেসে উনকে শরীর মে প্রাণ হ্যাঁ কি নহি রুই দে করকে দেখতে আর রুই কফা একদম জল জাতা হাত মে খোফলে আ জাতে কহতে হ্যাঁ কি থোড়ে সে পানি মে মছলি পানি কো গন্দা কর দেতি অথা পানি মে कुछ नहीं, कोई भाव ही नहीं होगा। उसी तरह से रूप गोस्वामी का हृदय महान अथाह, उसमें ये सब भाव गंभीर रूप से रह जाते थे, वो ऊपर में प्रकट नहीं करते थे। तो आज उनके चरणों में भी हम लोग पुष्पांजलि दे रहे हैं। वी आर गिविंग पुष्पांजलि इन द लोटस फीट ऑफ श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आज आप लोगों से एक निवेदन है, एकटा निवेदन। हमारे पांडा जी चतुर्वेदी जमुना प्रसाद 7-8 दिन से मथुरा में हम लोगों को दर्शन करा रहे हैं। अकेला दर्शन यदि आस्ते तले 200-400-500 टका एक लोकर नहीं है तो पांडा एजेंड। हमारे निवेदन के कुछ कुछ पांडा के दें, एखनी ब्रह्मचारी लोग सब उठे जाए। यू आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू गिव सम डोनेशन फॉर पांडा बिकॉज ही इज ट्रैवलिंग विथ अस एंड ही शोइंग द प्लेसेस विथ अस फॉर 4, 5 or 6 डे। वी शुड काइंडली गिव हिम सम डोनेशन। ब्रह्मचारी ओ यू शुड गो एंड टेक सम यू शुड गो देयर। ए ओदिके उचले सभी लोग कुछ कुछ देंगे। एवरीवन टू गिव द पांडा।